नमस्कार भारत, सोमवार 25 जुलाई, आज आपके साथ निखिल रंजन। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली ने विश्वास मत पर वोटिंग से पहले दिया इस्तीफा, माओवादी नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के आसार।
बजेट आश्रित विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदबाट अस्वीकृत भइसकेपछि मैले बुझेको छु, कारण जेसुकै होस्।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कश्मीर दौरा खत्म, लेकिन घाटी में तनाव अब भी बरकरार। सुनवाएंगे खास बातचीत पत्थर फेंकने वालों से।
हम पत्थर से ये चाहते हैं कि हमारी आवाज पहुंचे पहाड़ तक, कि हम चाहते क्या हैं।
जी ये तो सच है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि ये गुस्से का इजहार है।
असम के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय एथलीट से भी होगी बातचीत, लेकिन पहले सुनिए प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही नेपाल में राजनीतिक संकट एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। ओली का विरोध करने वाले दलों ने उन पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि पूर्व माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जर्मनी से खबरें मिल रही हैं कि नूरेमबर्ग के नजदीक आंसबाग शहर में एक बार में धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और 10-11 लोग घायल हुए हैं। धमाके की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन शहर के मेयर के हवाले से खबरों में कहा गया है कि ये एक विस्फोटक उपकरण था। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि धमाका जानबूझकर किया गया है। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि धमाके की वजह गैस हो सकती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने घटना स्थल की घेराबंदी कर दी है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब जर्मनी में बीते हफ्ते हिंसक घटनाओं के बाद तनाव बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि उनकी टीम रियो डी जेनेरियो स्थित ओलंपिक विलेज में नहीं रहेगी, क्योंकि वहां रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख किटी चिलर ने कहा कि ओलंपिक विलेज में बिजली के तार नंगे हैं, पाइपों से पानी का रिसाव हो रहा है और शौचालय भी ठीक से काम नहीं कर रहे। हमने ये फैसला अपने सभी खिलाड़ियों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए लिया है। हमें जिस इमारत में ठहराया गया है वो रहने लायक नहीं है। वहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि हम अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये थी ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख किटी चिलर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने कहा है कि रियो ओलंपिक खेलों में रूस पर प्रतिबंध की सिफारिश खारिज किए जाने से उसे निराशा हुई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने कहा है कि संबद्ध खेलों की नियामक संस्था से मंजूरी हासिल करने वाले रूसी खिलाड़ी रियो ओलंपिक में हिस्सा ले सकेंगे। रियो ओलंपिक खेल अगले महीने से शुरू हो रहे हैं। भारत ने एंटीगा में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को खेल के चौथे ही दिन एक पारी और 92 रनों से हरा दिया है। पहली पारी के आधार पर 323 रन से पिछड़कर फॉलो ऑन का सामना करने वाली वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 231 रनों पर सिमट गई। वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में आर अश्विन ने करारे झटके देते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। आर अश्विन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश के विरोध और लोकतंत्र के समर्थन में हजारों लोगों ने इस्तांबुल में विशाल रैली निकाली है। इस रैली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दल शामिल हुए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। जैसा कि आपने खबरों में सुना कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। CPN, माओवादी और नेपाली कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को सत्ताधारी सहयोगी दलों का समर्थन मिलने के बाद ओली ने इस्तीफे का ऐलान किया। नेपाल में बीते 10 सालों में 8 सरकारें बन चुकी हैं और अब एक बार फिर अनिश्चितता का अंधेरा देश पर गहरा गया है। पूरा ब्यौरा सुनिए संदीप सोनी से।
नेपाल में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के साथ एक नई राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। हालांकि इसकी आशंका उसी वक्त तेज हो गई थी जब नेपाली कांग्रेस और प्रचंड के नेतृत्व वाले CPN माओवादी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी थी। सत्ता के दो प्रमुख सहयोगी मधेशी पीपुल्स राइट्स फोरम और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने के ऐलान ने रविवार को रही सही कसर भी पूरी कर दी और प्रधानमंत्री ओली के पास इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
बजेट आश्रित विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट अस्वीकृत भइसकेपछि मैले बुझेको छु, कारण जेसुकै होस् मलाई प्रधानमन्त्री,
कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जब बजट से जुड़े विधेयक संसद में अस्वीकृत हुए तो मैं जानता हूँ मुझे प्रधानमंत्री चुनने वाले सांसदों का समर्थन मेरे साथ नहीं रहा। इसलिए बदलती हालात को मद्देनजर रखते हुए नए प्रधानमंत्री के चयन का मार्ग प्रशस्त करते हुए मैंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है।
नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली का कहना है कि उन्होंने संकट के दौर में नेपाल का नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। ओली ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों की आलोचना की और कहा कि उन्हें अच्छे कामों की सजा मिली है।
आम जनतालाई थाहा छ, वर्तमान सरकार का राष्ट्रीय हित र स्वाभिमान का कदमहरू सरकारले
वर्तमान सरकार के राष्ट्रीय हित और स्वाभिमान के लिए उठाए कदम आम लोग जानते हैं। सरकार ने निर्माण किया, समानता पर आधारित नए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के पक्ष में समझौते हुए और समृद्धि की दिशा में सफर तय किया। इसी वजह से सरकार के खिलाफ घेराबंदी के प्रयत्न बहुत पहले ही शुरू हो गए। मित्रों, इस कदम की वजह से किसी की अतृप्त आकांक्षा तो पूरी हो सकती है, लेकिन आपके कदम 10 महीने पुराने संविधान के पालन में सहायक नहीं होंगे, बल्कि उसे संकट में धकेल देंगे।
केपी ओली पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री बने थे। पिछले 10 साल में ये नेपाल की 8वीं सरकार थी। सरकार का गठन ऐसे वक्त में हुआ जब नेपाल भूकंप की तबाही और दूसरे कई संकटों से जूझ रहा था। ओली के दौर में नेपाल के भारत के साथ संबंध काफी तनावपूर्ण रहे। हालांकि केपी ओली का कहना था कि उनकी कोशिशों से अब सब कुछ सामान्य हो गया है। इसके साथ ही ओली ने चीन के साथ रिश्ते बेहतर होने और वहां से सीमा खुलने को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया है। दूसरी ओर ओली का विरोध करने वाले दलों ने उन पर अपने वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि माओवादियों के हथियार बंद आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद हथियार छोड़कर मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने वाले पुष्प दहल कमल उर्फ प्रचंड नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी। नेपाल में अब नई सरकार का गठन होगा। ओली की पार्टी का साथ छोड़ने वाले सीपीएन माओवादी पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कुमार दहल प्रचंड अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसे कयास कई लोग लगा रहे हैं और इसकी प्रबल संभावना है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने काठमांडू में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे से बात की और सबसे पहले पूछा कि ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल का राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में बढ़ रहा है, तो उनका जवाब था,
नए सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आने वाले 10 दिन या 2 हफ्ता के अंदर में संभवतः माओ नेता पुष्प कमल दहाल प्रचंड के नेतृत्व में और जो पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस, उसके समर्थन में और कोएलिशन पार्टनर भी बनेगा, शायद गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन उसके बाद की स्थिति भी नेपाल में काफी संवैधानिक अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस सबको लेकर मुझे लगता है वो स्थिति बना रहेगा, क्योंकि ये त्रिशंकु संसद है और जो पार्टी कोएलिशन में आने जा रहे हैं गवर्नमेंट में, उनका संबंध पास्ट में बहुत ही तिक्त रहा है।
नई सरकार के सामने चुनौतियां और भी होंगी, सरकार चलाने के अलावा जिस तरह से नेपाल में लगातार एक के बाद एक दिक्कतें रही, तो नई सरकार के लिए आगे का रास्ता आप किस तरह का देखते हैं?
एक तो स्थायित्व तो है, दूसरा ये जो संविधान आया है उसके ऊपर भी बहुत सारे रिजर्वेशन है, तीसरा अर्थक्वेक के बाद का रिकंस्ट्रक्शन है, विस्थापित लोग हैं उनको अपने घर में लाने का माहौल क्रिएट करना, और आर्थिक स्थिति नेपाल की काफी नाजुक बनता जा रहा है, और जो इन्वेस्टर्स है उनमें कॉन्फिडेंस को किस तरह गवर्नमेंट बढ़ा सकता है, ये चैलेंज होंगे नए गवर्नमेंट का। लेकिन इसमें मैं ज्यादा कंट्रडिक्शन भी दिखता हूँ, क्योंकि माओइस्ट पार्टी संसद में सबसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ा पार्टी है वो सेकेंड पार्टनर के रूप में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए नेपाली कांग्रेस ज्यादा एसर्ट करेगा और शायद बिना जवाबदेही ज्यादा रूल करने की कोशिश करता है, ये भी आने वाले दिन में चैलेंज हो सकता है नए नेतृत्व के लिए।
एक बड़ा सवाल नेपाल भारत संबंधों को लेकर भी है, नई सरकार के लिए इन संबंधों को लेकर भी क्या कोई चुनौती होगी?
जरूर चुनौती होगी। एक तो नेपाल में भारत के बारे में ज्यादा ये आक्रोश आम पीपल में ये है कि नेपाल के आंतरिक राजनीति में जो होने वाले प्रधानमंत्री ने कई बार बोला है कि इंडिया नेपाल में माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करता है, शायद उसको किस तरह देखेंगे और किस तरह का परसेप्शन बनता है, रियलिटी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर। दूसरा, नेपाल में संविधान जारी होने के बाद जो भारत का रिजर्वेशन रहा संविधान में, और उसके बाद जो बॉर्डर ब्लॉकेड हुए नेपाल में, काफी हार्डशिप्स कठिनाई आई, उसके बाद नेपाल ने चाइना के साथ जो संबंध है उसको नया आयाम दिया है, शायद उस तरह वो संबंध अभी एक सिचुएशन पे, एक पॉइंट पे पहुंच गया है जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं।
काठमांडू में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे से बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। आइए रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में तनाव, कर्फ्यू और अशांति के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे के दूसरे दिन पाकिस्तान से कहा कि वो भारत के मामलों में दखल ना दे। गृहमंत्री ने कश्मीर से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की बात कही और कहा कि जिससे भी बातचीत होगी वो शांति बहाली के बाद ही होगी। राजनाथ सिंह ने पीड़ितों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात की, हालांकि कांग्रेस के नेता इससे दूर रहे। पूरा ब्यौरा सुनिए रियाज मसरूर से।
भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टोक शब्दों में कहा कि कश्मीर के मामले में भारत किसी तीसरी ताकत का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा।
और मैं अपने पड़ोसी देश से भी यह कहना चाहता हूँ कि आप तो स्वयं ही आतंकवाद से पीड़ित हो और आतंकवाद का सफाया करने के लिए आप वहाँ की लाल मस्जिद में घुसकर आतंकवादियों को मारने का आप काम करते हो, और दूसरी तरफ हमारे कश्मीर के नौजवानों को हाथ में हथियार उठाने की अपील करते हो।
गृहमंत्री ने कहा कि वो दो दिन में कई लोगों से मिले और उन्होंने सबसे ज्यादा पीड़ित जिला अनंतनाग का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है और शांति बहाली के प्रयासों को सफल होने में समय लगेगा।
इसे मैं मानता हूँ कि 2-4-10 दिन में, 15-20 दिन में, महीने में 7 समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा।
अलगाववादियों और पाकिस्तान के साथ बातचीत के प्रश्नों को टालते हुए गृह मंत्री ने कहा कि शांति बहाली के बाद बातचीत किससे करनी है और कब करनी है, ये सब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ सलाह के बाद ही तय किया जाएगा। मिस्टर सिंह ने कश्मीरी लोगों से अपील की कि वो पत्थरबाजी से दूर रहें और कहा कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को भी निर्देश दिया है कि भीड़ से निमटते वक्त संयम से काम लें। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजनाथ सिंह के साथ भेंट वार्ता के बाद पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत की मांग को दोहराया और साथ ही पाकिस्तान से कहा कि वो कश्मीरियों की भावनाओं को भड़काना बंद करे।
मैं भी वाजपेयी जी की इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हम साया नहीं, और अगर हम जब तक हम दोनों मुल्क आपस में अच्छे ताल्लुकात ना रखें, हमारे वजीर आजम ने एक शुरुआत की थी लाहौर जाके, कोई एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं। अगर हमने गुर्बत मुफलिसी दोनों मुल्कों की दूर करनी है, तरक्की करनी है और जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है।
महबूबा मुफ्ती की सरकार ने व्यापारी संगठनों, साहित्यिकों, कलाकारों, युवा उद्योगपतियों और लेखकों को गृह मंत्री से भेंट वार्ता के लिए निमंत्रित किया था, लेकिन इनमें से अधिकतम ने निमंत्रण को रद्द कर दिया। गौरतलब है 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की पुलिस ऑपरेशन में मृत्यु के बाद कश्मीर में भारत विरोधी आंदोलन छिड़ा, जिसे दबाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने गोलियों और पैलेट गन्स का अंधाधुंध उपयोग किया। सरकारी कार्रवाइयों में अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि 3000 लोग घायल हैं। घायलों में ऐसे 150 युवा और बच्चे हैं जिनकी आंखों और चेहरे पर छर्रे लगे हैं, इनमें से अधिकतम की रोशनी चली गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि घायल कश्मीरियों को विशेष विमानों में दिल्ली ले जाकर इनका इलाज करवाया जाएगा। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
कश्मीर में हिंसा के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों को कई बार सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकते देखा गया। ये कोई नई बात नहीं है, बड़े प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव होता है। पत्थर चलाने वाले ये लोग कौन हैं, वो पत्थर कहाँ से लाते हैं और पत्थर क्यों चलाते हैं, इन्हीं सवालों के साथ बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने पत्थर मारने वाले ऐसे दो कश्मीरी युवाओं से बात की और सबसे पहले पत्थर चलाने की वजह के बारे में पूछा।
हम पत्थर से ये चाहते हैं कि हमारी आवाज पहुंचे बाहर तक, कि हम चाहते क्या हैं।
पत्थर जो आप हथियार की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे कुछ अब तक ऐसा लगता है कि हासिल नहीं हुआ आपको?
जी ये तो सच है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि ये गुस्से का इजहार है। परसों भी हम घर में बैठे थे, 5-6 CRP वाले इंडियन आर्मी आई, उन्होंने मेरी माँ पर भी हमला किया, उसके हाथ में इस वक्त भी प्लास्टर है, हम क्या करते। हम फिर सब निकले, हमने पत्थरबाजी शुरू की।
इंडियन फोर्सेस से हमने बात की तो उनका कहना था कि जो पत्थर फेंकने वाले होते हैं वो प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं, वो बाहर से आते हैं, मोहल्लों में नहीं है।
नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हर कोई अपनी रजा से निकल रहा है।
देख रहे हैं, इसके बगैर भी देखा आपने 2008 में 2010 में किस तरह से कैसे किलिंग करते हैं।
तो आपने 2008 में 2010 में जो रेजिस्टेंस हो उसमें भी हिस्सा लिया?
एग्जैक्टली लिया।
तो पत्थर की अहमियत क्या है?
हमारे पास और कुछ भी नहीं है हथियार की, हमारी बात कोई सुने। ये पत्थर क्यों उठा रहे हैं हम?
क्यों उठा रहे हैं?
आजादी के लिए।
पत्थर लाते कहाँ से आप लोग? पत्थर चलाने में या पत्थरबाजी में हिस्सा लेते तो आपके अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य का कुछ ख्याल होता है कि भाई इससे मेरे मुस्तकबिल खराब हो सकता है या भविष्य खराब हो सकता
है? वो तो सही बात है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है जब जुल्म होता है आप पर आप उठो, जुल्म के खिलाफ उठो।
कोई और क्रिएटिव तरीके से आप अपना रेजिस्टेंस नहीं जाहिर कर सकते? फॉर एग्जाम्पल आपने पोइट्री से किया, ड्रामा से किया, किसी और ऐसी चीज से जिसे लोग करते हैं
इत्तेजाज? कहाँ दिखाते हैं वो, कहाँ मौका देते हैं उस तरह का? हमें तो दबा के रखा है, करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हम ऐसा?
गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है।
किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं?
हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भी कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की। पर इनको तो इधर की लैंड चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इनको यहाँ के लोग नहीं चाहिए, और हमें भी उनके साथ, हम भी नहीं चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें, हम आजादी चाहते हैं, दैट्स इट।
अब जैसे बहुत सारे आपकी उम्र के जो कश्मीरी बच्चे हैं, लड़के हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस में शायद उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन वो बाहर देशों में भी जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि काश हमारे साथ भी ऐसा होता?
नहीं, वो बात नहीं है, माशाल्लाह हम भी करते हैं अच्छा खासा बिजनेस, वो बात नहीं है।
कितना सीरियस है?
हम ऐसे पत्थर फेंके, ये तो पता ही है, वहाँ से गोली मिलती है, फिर क्यों?
जी जब सर, जब नमाज खत्म होती है, नमाज के बाद सब निकलते हैं, फिर एक जगह वो बाहर निकलते हैं और नारे देते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, इसमें क्या है, हम क्या चाहते हैं? आजादी। फिर नवाहटा से गाड़ी आती है, वो फिर शेलिंग करती है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल करते
हैं,
फायर मारते हैं कभी कभी, फिर वहाँ पर हर रोज होता है जुम्मे के दिन।
हमने देखा जब मैं उस दफा गया था तो पाकिस्तानी परचम मैंने देखा, और कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट का भी परचम वहाँ पे, तो ये क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को
दबाव के लिए होता है? जी सर, जो ऐसे का वहाँ पर झंडा होता है ब्लैक, वो दबाव होता है और कुछ नहीं,
मतलब उनको प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए।
जी जी,
ये थे पत्थर फेंकने वाले कश्मीरी युवा। और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के इस वक्त जो खींचतान चल रही है उसी पर है बात मुसतुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी, लेकिन उसको सुनने से पहले हम रुख करते हैं असम का, जहां बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा संकट उत्पन्न हो गया है, वहां कई ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस साल ये प्रदेश जो है वो तीसरी बार बाढ़ की चपेट में है, जिससे अब तक 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि पिछले 48 घंटों में 4 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र समेत धनसिरी, जिया भराली, बेकी, बुरहदेहिंग और संकोश नदियां अपनी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और सेना की मदद ली जा रही है, क्योंकि अगले 2 दिन तक बाढ़ की स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलीप शर्मा से।
असम के कुल 32 जिलों में 14 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश और भूटान में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्य के 1206 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले 48 घंटों में बाढ़ के पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या अधिक बताई जा रही है। प्रशासन ने 81 राहत शिविर और 50 राहत केंद्र खोले हैं। इन राहत शिविरों में करीब 22,000 बेघर लोगों ने शरण ले रखी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा,
हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 14 जिलों में लगभग 6 लाख लोग अफेक्टेड हुए हैं एंड 14 डिस्ट्रिक्ट है। अभी आप थोड़ा सा पानी में अभी लगता है कि वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु अभी पानी बढ़ने वाला है, बात यही है। लगभग 70+ कैंप है हमारे।
बाढ़ राहत को लेकर कई इलाकों से शिकायतें सामने आ रही है। बेघर हुए कुछ बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके घर डूब जाने के बाद वे खुद पास की स्कूलों में शरण लिए हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली। निचले असम के बरपेटा जिले के कोलगछिया राजस्व इलाके में बाढ़ से बेहाल साइदुल इस्लाम ने अपनी नाराजगी कुछ इस कदर व्यक्त की।
निचले
বারণী বাড়ি বকিপথ ভাঙি যাতায়াত ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেছে মানুষের অবস্থা এতিয়া মানুষ নিজে নিজে ক্যাম্প আদি
বাড় কে পানি সে আমার ইলাকে কি সড়ক পুরি তরহ টুট চুকি হ্যাঁ আব ইহা কি যাতায়াত ব্যবস্থা পুরি তরহ ঠপ পড়ি হোগোঁ কি হালত বেহদ খারাপ হ্যাঁ কাফি লোগোঁ কে ঘর বাড় সে নষ্ট হো গে বেঘর লোক স্থানীয় সরকারি বিদ্যালয় মে খুদ সে শিবির স্থাপিত কর শরণ লিয়ে হুয়ে হ্যাঁ জেলা প্রশাসন কি তরফ সে জো রাহত ইয়া ফির মদদ মিলনি চাইয়ে থি ওয়া মদদ আব তক নহীঁ মিলি রাহত শিবিরো মে খাস কর মহিলাওঁ ওর বচ্চোঁ কো কাফি কষ্ট উঠানা পড় রহা হ্যায় ইয়ে থে বাড় প্রভাবিত সাইদুল ইসলাম কে শব্দ বাড় সে রাজ্য কে বিগড়তে হুয়ে হালাত পর রবিবার কি শাম মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল নে আপনে শীর্ষ অধিকারিয়োঁ কে সাথ এক বৈঠক কি হ্যায় ওর আজ প্রভাবিত ইলাকোঁ মে কাম কর রহে প্রশাসনিক অধিকারিয়োঁ কে সাথ ভিডিও কনফারেন্স কর সমুচি স্থিতি কা জায়জা লেঙ্গে वहीं असम के राज्यपाल पीबी आचार्य ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद उत्पन्न स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
और आगे बढ़ने से पहले आइए जरा देख लेते हैं कि दिल्ली के अखबार में आज क्या कुछ छपा है। संदीप नजर डाल चुके हैं। जी संदीप,
अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस से शुरुआत करें तो अखबार की पहली बड़ी खबर सुर्खी यह है कि भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है और जिस बयान में वो कह रहे हैं कि भारत प्रशासित कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई तीसरी ताकत की कोई भूमिका नहीं है कश्मीर के मामले में, भारत कश्मीर के साथ भावनात्मक संबंध चाहता है। राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की है और महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि पाकिस्तान से कहा है कि वो हमारे युवकों को उकसाना बंद करे। इसके अलावा अंग्रेजी के अखबार द हिंदू में एक खबर है जो कहती है कि भारत सरकार रेड कॉरिडोर यानी नक्सल प्रभावित इलाकों में आने वाले मौजूदा जिलों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है। अखबार ने गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि नक्सल प्रभावित 106 जिले देश में हैं जिनमें से 20 जिलों को रेड कॉरिडोर से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि जब 2006 में नक्सल प्रभावित जिलों की पहचान की गई थी उसके बाद ये पहला मौका है जब जिलों की संख्या नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटाने की बात हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ चलें तो दो विरोधाभासी तस्वीरें छापी हैं अखबार ने अपने पहले पन्ने पर जिसमें एक को भारत के लिए शर्मनाक जबकि दूसरी को भारत के लिए गौरव की बात बताया गया है। खबर में लिखा है कि रियो ओलंपिक से ठीक पहले पहलवान नरसिंह यादव डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए जबकि 18 साल के नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 जेवलिन यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया।
बहुत शुक्रिया संदीप सोनी अखबारों की समीक्षा के लिए। और आइए अब सुन लेते हैं वसतुल्ला खान से कि वो क्या कह रहे हैं आज पाकिस्तान डायरी में।
जब नवाज शरीफ कहते हैं कि एक दिन पूरा कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा तो वो उतना ही गलत है जिस तरह सुषमा स्वराज का ये कहना कि पाकिस्तान का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना तो कोई भी कहीं भी कभी भी देख सकता है, सपना देखना जुर्म तो नहीं। कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ आधे पूरे होते हैं, अक्सर नहीं भी होते। जब से दुनिया बनी है जाने कितनी सल्तनतें बनी और बिगड़ी, जाने कितनी उठती और मिटती रहेंगी, मगर दुनिया के हर बादशाह का यही ख्याल होता है कि उसकी बादशाहत हमेशा रहेगी। जो दूसरों के साथ हुआ है वो मेरे या मेरी पीढ़ियों के साथ नहीं होगा। मगर मैं दुनिया के किसी ऐसे देश को नहीं जानता जो ये दावा कर सके कि उसकी सीमा उतनी ही है जितनी 100 वर्ष पहले थी। मैं किसी ऐसे दरिया को नहीं जानता जो हमेशा से एक ही रास्ते पर बहता चला आ रहा हो। सीमाएं और दरियाई लकीरें इंसानों के रहमो करम पे नहीं बल्कि इंसान इन रेखाओं के रहमो करम पर है। इसलिए हंसी आती है ये सुन सुन के कि हम अपने दरिया के एक एक कतरे के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे या हम अपने देश के एक एक इंच की रक्षा करेंगे इत्यादि इत्यादि। मगर भाई किस देश के एक एक इंच के लिए कट मरेंगे? अंग्रेज से पहले का भारत कुछ और था, विभाजन के बाद का कुछ और है। पाकिस्तान की सीमा 1947 में कुछ और बनी थी और 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद कुछ और हो गई। धरती भी हंसती होगी कि देखो तो सही, मैं तो लाखों वर्ष से हूँ और जाने कब तक रहूँगी, और वो मनुष्य के जो मुश्किल से 100 साल भी जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरी रक्षा करने की सौगंध खा रहा है, ये जाने बिना कि मरने के बाद मैं ही अपने पेट में उसे दोबारा छुपाऊंगी भी। जानता हूं कि आजकल भारत और पाकिस्तान में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और इसका असर नेताओं के दिमागों पर भी पड़ रहा है, इसलिए उनका कहा सुना माफ कर दीजिए, ये भी वैसे ही गुजर जाएंगे जैसे कि वे गुजर गए।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
नमस्कार, भारत आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ, और आइए अब जरा खेल की कुछ खबरें सुनते हैं। पोलैंड के बिस्गोस्ट में चल रही अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी आप भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 86.48 मीटर भाला फेंका, जो इस कैटेगरी में नया विश्व रिकॉर्ड है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने पोलैंड में मौजूद नीरज से बात की और उनकी कामयाबी के बारे में पूछा।
जी बहुत अच्छा लग रहा है, टारगेट था कि हाँ अच्छा करूं और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, बहुत अच्छा लगा।
हम उस पूरे इवेंट की कहानी आपसे सुनना चाहेंगे कि वो पूरी कहानी क्या है, वो आप हमें बताइए।
स्टार्टिंग में है कि कई बार स्टार्टिंग में नहीं होता तो हमारे पास चांस होते हैं तो और में हम जोर लगा सकते हैं, तो और उसके बाद मैंने पूरा अपना ट्राई की और उससे अच्छा किया सेकंड वाले में। पहली बार में मैंने 79.66 मीटर फेंका और दूसरे में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया।
उस समय का वो जो लम्हा था, जो आपको पहला मौका मिला जिसमें आप अपनी उम्मीद के मुताबिक नहीं फेंक पाए, तो आपको लग रहा था कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं?
जी जी, ये तो कॉन्फिडेंस था कि अच्छा करूंगा, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं नहीं सोच रहा, पर वो भी एक मतलब अच्छा है, हार्ड वर्क किया था तो उसका रिजल्ट मिला है, ऐसी बात नहीं है।
आप हरियाणा के पानीपत से आते हैं और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद हर किसी की जुबान पर आपका नाम है, आप अपनी कामयाबी की कहानी अगर हमारे साथ बांटना चाहें।
देखो शुरू में स्पोर्ट्स का तो कुछ पता नहीं है, घर में गांव में मतलब कोई स्पोर्ट्स करता ही नहीं है, खेती करते हैं जी, फार्मर हैं, उनको स्पोर्ट्स के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही बोलते हैं कि भाई अच्छी मेहनत कर और अपने आप पे विश्वास रख, सच्चे दिल से मेहनत कर, सब कुछ अच्छा होगा। स्टार्टिंग में ग्राउंड पे जाता था पानीपत, तो उधर ही सीनियर थे वो फेंकते थे तो काफी अच्छा लगता था, और इतना पता तो नहीं था जेवलिन के बारे में, लेकिन एक अच्छा लगता था गेम, एथलेटिक्स काफी फेमस है वर्ल्ड में, तो बस इंडिया में थोड़ा कम हम जानते थे और काफी अच्छा लगा, और एक दो बार मैंने ट्राई करके देखा तो बढ़िया अच्छी फीलिंग आई और थोड़ा रिजल्ट आता गया तो सोचा कि हाँ इंडिया का नाम करना है और दिखाना है कि हाँ भाई एथलेटिक्स में और इंडिया के स्पोर्ट्स में भी दम है।
अभी आप 20 साल के हैं और एक बड़ी कामयाबी आपके नाम हो चुकी है, आगे के क्या लक्ष्य हैं आपके?
आगे देखो अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप है, तो वो टारगेट है, उसमें अच्छा करने की कोशिश करूंगा।
तो वहाँ क्या मिस कर रहे हैं?
बस मिस तो सबसे पहले तो रोटी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रोटी वगैरह नहीं मिलती है, खाने पीने की सब्जी, तो उसको काफी मिस कर रहा हूँ।
तो माँ के हाथ के बनाए हुए खाने को मिस कर रहे हैं वहाँ, रोटी?
जी माँ के हाथ के बनाए हुए खाने, क्योंकि 3 महीने मुझे यहाँ पे हो गया है।
भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और अब चूंकि कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है तो आइए प्रमुख समाचार सुन लेते हैं एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही नेपाल में राजनीतिक संकट एक बार फिर गहरा गया है। जर्मनी से खबरें मिल रही हैं कि नूरेमबर्ग के नजदीक आंसबाख शहर में एक बार में धमाका हुआ है जिसमें एक व्यक्ति मारा गया है और 10-11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि उनकी टीम रियो डी जेनेरियो स्थित ओलंपिक विलेज में नहीं ठहरेगी क्योंकि वहां रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने कहा है कि रियो ओलंपिक खेलों में रूस पर प्रतिबंध की सिफारिश खारिज किए जाने से उसे निराशा हुई है। भारत ने एंटीगा में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को खेल के चौथे ही दिन एक पारी और 92 रनों से हरा दिया है। तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश के विरोध और लोकतंत्र के समर्थन में हजारों लोगों ने इस्तांबुल में रैली निकाली है। इस रैली का आयोजन विपक्षी दलों ने किया था, लेकिन इसमें सत्तारूढ़ पार्टी ने भी शिरकत की। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं देवाशीष कुमार। आपसे एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।